उसने कहा मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, बहुत ऐसी बातें हैं, मेरे तो जो समझ नहीं आती, मतलब मुझे कोई जवाब ही नहीं दे सकता। बहुत उसको गिले शिकवे, शिकायतें, ऑब्जेक्शंस, बाकायदा ये नहीं कि अपने हालात पे, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों हुक्म है, वो क्यों ऐसा है। अल्लाह अकबर, काश इंसान अपने रब को पहचान जाए ना, तो उसकी बोलती बंद हो जाए और उसकी मोहब्बतों का अंदाजा कर लेना, तो इस इंसान का ना रुआ रुआ जो है वो पुकार उठे कि अल्लाह तेरा जैसा कोई नहीं है। जोड़ जोड़ अलग हो जाए अगर वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को पहचान जाए कि वो मेरे रब इतना मोहब्बत करने वाला है, अलवदूद इतना मोहब्बत करने वाला, ये उसकी मोहब्बत है ना कि वो बुला रहा है, वरना जाओ जहां मर्जी रुलते फिरो, उसको क्या परवाह, उसकी बादशाहत में क्या कमी है, उसको क्या फर्क पड़ता है। तुमने अपने आप को गुनाहों में डालना डालते रहो, तुम्हें सब कुछ बता दिया, नहीं सुनते ना सुनो। अल्लाह अकबर। लेकिन वो जो कातिल भी है, जानी भी है, मुजरिम भी है, जिसने क्या क्या नहीं गुनाह कर दिए, वो भी सारे इसमें, अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, वो सब है इसके अंदर। वो जिसको दुनिया भी लानते भेजे और दुत्कारे, वो भी अगर रियलाइज कर ले, और रियलाइज करने के लिए कोई सी किसी अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया जाओ काबा जाओगे तो वहां पे अगर माफी मांगोगे तो फिर होगी। हम कहे हमारे पास तो टिकट ही नहीं, हाय हमारे पास तो जाने के वसाइल ही नहीं, वो कहता है बस तुम जिधर हो वहीं पे तुम पशेमानी इतनी आ जाए कि बस मेरे अल्लाह मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तू मुझे माफ कर दे। इतना सा भी, यानी हदीस में आता है कि इतना सा भी कि जितना मक्खी का सार है, इतना सा भी आंसू आंख में आ गया ना कि जो बस आंख के किनारे को इतना सा तुम्हें रियलाइज हो गया, अल्लाह ताला उसी वक्त ही माफ कर देता, उसी वक्त ही माफ कर देता है। कि यानी ये भी नहीं है कि तुम्हें ये करना है और ये करना है और फिर ये और ये वाला, नहीं मैं गुनाह माफ करूंगा ये वाला कर दूंगा ना, अज़्ज़ुनूब जमीया सारे के सारे गुनाह माफ कर दूंगा, बस तुम्हें एक दफा निदामत तो हो जाए, एक दफा तुम ये सोच लो कि मैंने पलटना है, एक दफा तुम्हें ये पता हो कि मेरा एक रब है जो माफ करने वाला है, ना किसी पादरी के पास ना इमाम के पास। वो तो कहते चर्च में जाओ और तुम कन्फेशन करोगे तो फिर, यानी इंसान अपना सारा कच्चा छट्टा जाके किसी को बताए, उसके सामने भी जलील हो और उसके बाद फिर उसको कोई वो कन्फेशन के वो देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं फरमाया, तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं, दिल ही दिल में अल्लाह से बात करते हो और अल्लाह ताला से तौबा करते हो, बख्शिश मांगते हो, मुझे माफ कर दे किसी जुबान में भी। कोई तुम्हें जरूरी नहीं कि आपको कोई कुरानी दुआएं, मसनून दुआएं ही आती हो तो आपने उसमें मांग, हाँ पशेमानी जरूर हो, निदामत जरूर हो, हाँ ये पछतावा जरूर हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो गया मुझसे, हाँ ये जरूर एहसास दिल में हो कि अब मुझे मौका मिले तो अब नहीं कभी करूंगी, ये है तौबा, ये है बख्शिश मांगना, तो अल्लाह ताला माफ कर देता है और उसको कोई परवाह नहीं है ना, उससे किसी ने पूछना है अल्लाह तूने क्यों इसको माफ किया, ना उसने ये देखना है कि बूढ़ा होके आया कि जवानी में आया, ना उसने देखना है कि ये इसके गुनाह कितने थे, लाख थे कि 10 लाख थे, करोड़ थे या उससे भी ज्यादा थे, आसमानों की बुलंदियों को छू गए या उससे कम थे, ना उसने तोलने हैं, उसने सारे गुनाहों को डिलीट खत्म, इतना मेहरबान रब कहीं बताओ कि कोई हो सकता, अरहमुर्राहिमीन वाकई वो है। लोग गुन गाते हैं इंसानों के और कहते हैं अल्लाह ने ये क्यों कर दिया, उसके ऊपर ये क्यों जुल्म हो गया, अल्लाह ताला ने उसको क्यों नहीं रोका, अल्लाह ताला ने, तुम जाने ही नहीं कि अल्लाह कौन है इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो, तुम्हें पता ही नहीं, और ना कभी कोई गिला शिकवा जुबान पे ना आए। तो ये है वो रब के इन्ना हु अल गफूर रहीम, इवन अगर शिर्क भी कर चुके हो तो अभी भी वक्त है माफी मांग लो, अभी भी वक्त है पलट आओ, अभी भी वक्त है तौबा कर लो। शैतान ने कहा था ना, अल्लाह मैं इनको बहकाता रहूंगा, मैं बहकाता रहूंगा। जब अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी, मैं इनको आखिरी सांस तक बहकाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं भी इब्ने आदम को बख्शता रहूंगा, बख्शता रहूंगा, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगता रहेगा, उसकी आखिरी सांस तक जब तक बख्शिश मांगता रहेगा मैं भी उसको बख्शता रहूंगा। ये तो अल्लाह ताला ने वादा दे दिया। इवन आप देखें, यानी इतनी बड़ी बात है कि अस्हाबुल उखदूद जो थे, जिन्होंने उस वक्त के ईमान वालों को आग में डाला था, उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बुरूज में, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनाती सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, कि जो फिर तौबा ना करे उनके लिए है। तौबा अगर कर ले वो तो अल्लाह उनको भी माफ करने को तैयार। ईसाई लोग जो शिर्क करते हैं, जो तसलीस का अकीदा रखते हैं, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं, उनको भी अल्लाह ताला ने फरमाया अफला यतूबूना इलल्लाह वयस्तगफिरूना, क्या तुम तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ नहीं आते? चलिए अगर तुम भी तौबा कर लो अल्लाह ताला माफ कर देगा, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है कि शिर्क जैसे गुनाह को भी अल्लाह ताला माफ करते। वो जिसने 99 लोगों का कत्ल किया, लोग कहते हैं कि हकूकुल इबाद, वो नहीं अल्लाह माफ करेगा, बाकी सब माफ कर देगा। बाकी यानी अल्लाह के हक में जितनी मर्जी कमियां कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में वो छुट्टी ले लेते। अल्लाह के हक में कमियां कर लो, लोगों के हक में ना, ठीक है, लोगों के हकूक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और अल्लाह ताला इससे बड़ा खुश होता है जब इंसान इंसानों के साथ भलाई करता है, लेकिन 99 का कातिल उसको भी तो अल्लाह ने माफ किया ना, उसे अल्लाह की जनाब में तो नहीं कुछ किया था, इंसानों के हकूक, इससे ज्यादा बड़ा हक क्या मारना कि उसकी जान ही ले ली, अल्लाह ने माफ किया ना। अब अल्लाह ताला उनको कैसे कॉम्पेंसेट करता है वो अल्लाह ताला का काम है, लेकिन कभी ये ना सोचे ये तो बस माफ ही नहीं होना, नहीं, अल्लाह ताला माफ कर देगा अगर तुम माफी मांगोगे। हाँ, अगर वो लोग जिंदा है तो आप जाके उनसे माफी भी मांग ले, ताकि यहीं पे सारा कच्चा चटा सारा साफ हो जाए, हिसाब साफ हो जाए। हदीस में आता है एक बूढ़ा शख्स जो था ना, लकड़ी टेकता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, उसने कहा कि मेरे छोटे मोटे गुनाह बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मैंने ऐसे गुनाह किए हैं और इतने सरकशियां और इतनी नाफरमानियां की हैं, क्या मेरे लिए कोई बख्शिश है, मुझे बख्श दिया जाएगा? यानी अब वो बूढ़ा हो चुके, आप सोचेंगे कितने गुनाह होंगे, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, अब बुढ़ापे में आके कह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अल्लाह की तौहीद की गवाही नहीं देता? उसने कहा हाँ। रिसालत की गवाही देता? उसने कहा हाँ। अल्लाह ताला तेरे गुनाह माफ कर देगा फिर, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बशारत दी। तो बंदा क्यों मायूस होता है? वो मायूस असल में हम तब होते हैं जब हम ना अल्लाह ताला को अपने जैसे इंसानों की तरह समझने लगते हैं, कि जब इंसान नहीं माफ करते तो इंसानों का तो हाल ये है ना कि अगर वो माफ कर भी दे तो दिल में जरूर रखते हैं, कहते हैं क्या करें, बस बात तो आ ही जाती ना, भूलती तो नहीं है ना, लेकिन अल्लाह ताला भुला देता। अल्लाह अकबर। मगर ये बंदे को भी नहीं चाहिए कि इस उम्मीद पे फिर गुनाह करता रहे कि माफी तो मिल ही जानी है, वो तो माफ कर ही देता है, नहीं, फिर ये ना करें, ये दलेरी है गुनाहों के ऊपर, बजाय इसके कि इंसान फिर और ज्यादा अल्लाह ताला के करीब आ जाए कि अल्लाह तू इतनी मोहब्बत करने वाला, ए अल्लाह तू इतना मेहरबान, अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि इंसान इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला की तरफ आए कि अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन गुनाहों पे दलेर ना हो। तो अल्लाह ताला ने एक मायूस इंसान को भी मायूसी से निकाला। बाज लोग मायूस होके फिर क्या करने लगते हैं, शराबे पीने लगते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि गुनाहों की भी अपनी नहुसत होती है ना, और गुनाहों की वजह से इंसान को कहीं चैन नहीं आता, और शैतान भी हर वक्त उसको ये कह कह के बाज लोग खुदकुशी कर लेते हैं, ये हमसे हो गया, अब हमारी कोई माफी नहीं। वो अपने आप को खुद ही नहीं माफ कर पाते, तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है और अल्लाह ताला को माफी पसंद है, इसलिए वो माफ करता है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे या इबादी कह के बंदे को जो अपना और अल्लाह का रिश्ता है ना, वो याद दिलाया और हमें याद दिलाया कि इस रिश्ते को कभी ना भूलना। भूल भी गए थे तो अब लौट आओ, अब एक नई जिंदगी का आगाज कर लो। अब इंसान देखे दोबारा से स्टार्ट ले सकता है इसके बाद। इंसान के अंदर से वो गिल्ट जो उसको हर वक्त तंग करती है, वो अल्लाह ताला खत्म कर देता है कि कोई बात नहीं तुम आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ पे मेरी जान है, अगर तुम गुनाह करते 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 जमीन और आसमान भर दो, हालांकि कोई इतने नहीं कर सकता, लेकिन इतने करो कि जमीन और आसमान भर दो, फिर अल्लाह ताला से इस्तिग़फार करो तो बेशक वो तुम्हें बख्श देगा। अल्लाह अकबर। और ये सिर्फ इस्तिग़फार की तस्बीह नहीं, क्या निदामत, शर्मिंदगी, ये शर्मिंदगी जरूर होनी चाहिए। और अपने गुनाहों को कभी हल्का ना समझे। मुनाफिक है जो अपने गुनाहों को हल्का समझता है, ऐसे जैसे नाक पे बैठी हुई मक्खी। मोमिन जो है वो छोटे छोटे गुनाहों को भी इतना समझता है कि जैसे पहाड़ के नीचे बैठा हूं, तो पहाड़ मेरे ऊपर गिराएगा। और कभी भी ये भी ना सोचे, ये भी शैतान के वसवसे होते हैं, अब मुझसे कौन सा तौबा पे कायम रहा जाएगा, इसलिए मैं अभी करती ही नहीं हूं तौबा, एंड में करूंगी, ताकि सारे गुनाह कर लूं फिर करूंगी। नहीं, आज ही करें, अभी करें। हमें क्या पता कि हमें मोहलत मिलेगी कि नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है ना, जिसको यकीन हो गया कि उसका एक रब है और वो गुनाह माफ करता है, तो मैं उसको, मुझे परवाह नहीं, फिर मैं उसको गुनाह माफ कर दूं। तो इतराफ़े गुनाह बड़ी चीज है। देखिए आप ये कहना, हमने कौन सा इतने गुनाह किए हैं कि अब हम माफिया ही मांगते जाएं, हमने कौन सा ऐसा कुछ कर दिया, ये तो फिर इसका मतलब कोई माफी क्या इंसान मांगे। मैं तो सोचती हूँ माफी की, तौबा करने की तौफीक भी मिल जाना ना, ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत होती। वो बाज लोग गुनाह करते रहते तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती, और वो इसी तरह कहते रहते हैं ना कर लेंगे ना कर लेंगे, आज नहीं करना हमने, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, जब ये काम हो जाएगा तब करेंगे, एक ही दफा तौबा करेंगे, बार बार तो नहीं ना करनी, और मेरी कौन सी तौबा कबूल होनी। और देखिए ये सबसे ज्यादा कुरान की खुशी देने वाली आयत है, सबसे ज्यादा। हाँ, तो इतराफ़े जुर्म भी इंसान करे, गुनाहों का इतराफ भी करे और गुनाहों पे अड़े भी नहीं, वरना फिर शर्मिंदगी इस बात की अगर अड़ी जाना है उसके ऊपर, अगर वही करते रहना और यही सोचते रहना मैंने कत्ते तो जाना है, मैं अभी बस माफी मांग लेती, ये नहीं। तो बहुत प्यारी आयत है। अब इसके बाद हमें बताया गया है कि किस तरह आप इस तौबा पे कायम कैसे रह सकते हैं। अब तौबा कर ली है ना, तो अब कैसे कायम रह सकते हैं। देखो ये ना हो कि हमारी तौबा टूट जाए, तो इसकी हिफाजत के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, कि बस मेरी तौबा कायम रहे। अनीबू इला रब्बिकुम, और रुजू करो अपने रब की तरफ। यानी मैंने आपको बताया इनाबत क्या होती है, इनाबत है बार बार पलटना, बार बार पलटना, बार बार लौटना अपने रब की तरफ, लौटो बार बार, बार बार पलटो वो असली मूलहू, और इस मती हो जाओ, इस्लाम ले आओ का मतलब क्या, सबमिशन होती है इस्लाम, यानी सबमिट कर दो अपने आप को अल्लाह ताला के आगे, बगावत ना करो, अकड़ो नहीं। तो पिछली जो बात है अब इसी की कंटिन्यूएशन है आगे। पिछली आयत जो है ना, कि जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है वो नंबर वन क्या करें, ला तकना तो मेरा रहमतेगा, नंबर टू क्या करें वो, वह अनीबू इला रब्बी, समझ आई। तो वो अपने रब की तरफ इनाबत करें, रुजू करें, झुके, और इनाबत समझ लें कि अंदर की कैफियत है और इस्लाम बाहर की कैफियत है। सबमिशन बाहर की, नीबू अंदर। नबूवत के बारे में बहुत सारे अकवाल उलमा ने बताए, वो जैसे इखलास के साथ अल्लाह की तरफ पलटना, तौबा और इखलास के साथ अल्लाह की तरफ पलटना, इसी तरह गफलत से निकल आना, अब गफलतें मैंने छोड़ देनी है, अब नहीं अल्लाह से दूर रहना, फिर नेकियों की तरफ लपकना, गुनाहों को छोड़ देना। ये मैं आपको डिफरेंट अकवाल को समराइज करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चले अनीबू में क्या क्या आता है। दिल में अल्लाह की अजमत का एहसास हो जाना, ठीक है, दिल में ये होना कि अल्लाह ताला इतना तू अजीम है, तू इतना बड़ा है, मैं कैसे तेरी नाफरमानी कर सकती हूँ। इताअत पे जम जाना, और इसी तरह अल्लाह ताला के मकाम को पहचानना, उसके जलाल के आगे आजी करना, अल्लाह ताला से दोस्ती कर लेना। नाराज होके चले गए थे ना, जब गुनाह किए तो दूर चले गए, अब वापस पलट आना, अल्लाह ताला से वापस दोस्ती कर देना, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ देना और अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चलना। तो जब इंसान अनीबू इला रब्बिकुम करेगा ना, जो गुनाहगार है उनको ये कहा जा रहा है कि इनाबत करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, और असलिमू करेगा जवारे के साथ, अपने आजा के साथ भी, बस फरमाबरदारी में लग जाओ, नेकियों के कामों में मना। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम वला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उन्होंने एक बात ही नहीं अगली की, उन्होंने कहा मैं अपने रब के आगे झुकता हूँ, मुती होता हूँ, फरमाबरदार होता हूँ। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, वो तो पहले ही फरमाबरदारों में से थे। वो हमें हमें तो कितनी जरूरत है कि हम अल्लाह के आगे झुके, इस्लाम अपने आप को मुकम्मल सुपुर्द कर देने वाली की माना देता है, मुकम्मल सुपुर्दगी, सबमिशन, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलना। तो यानी इंसान अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर दे। किसी शख्स ने पूछा था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया तुम अपना दिल अल्लाह के सुपुर्द कर दो और अपने चेहरे का रुख उसकी तरफ कर लो, ये बस अल्लाह ही है मेरा। तो ये अल्लाह की फरमाबरदारी है ना। अब देखे ना, इंसान जब गुनाह करता है तो दो ही उसके लिए रास्ते हैं, या तो वो इनाबत करे और तस्लीम, और या फिर वो गुनाहों पे अड़ जाए। तो गुनाह पे अड़ना नहीं है, फौरन अल्लाह ताला से तौबा करनी है और रुजू करना है। और मैंने आपको सारी रुजू की बात बता दी। अब आप इनाबत को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं ना, मैं एक अच्छी छोटी सी मिसाल से आपको बताती हूँ। इनाबत जैसे हम फोन की इनाबत करते हैं, हम अपने फोन की तरफ इनाबत करते हैं, कैसे बार बार इसकी तरफ रुजू करते हैं ना, देखा ना आपने, मिनट होता नहीं है तो हम टिक हुई तो हमने फौरन फोन उठा लिया, किसने मैसेज किया, या बार बार आके देखते हैं कोई बात तो नहीं, किसी ने कोई मैसेज तो नहीं कर दिया, ये इनाबत है। इस तरह अब आप तो समझ आ गई होगी ना इनाबत क्या है। इस तरह अपने रब की तरफ करो जैसे फोन की तरफ करते हो। बात तो बुरी है, ऐसी तो रही है, अल्लाह ताला की तरफ तो और ज्यादा इनाबत होनी चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे, और झुक जाओ उसके आगे। मिन कबली अयातिकुम, इससे पहले कि अजाब आ जाए, क्योंकि गुनाह करेंगे तो अजाब ही आएगा ना, कोई रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा। तो अजाब आने से पहले माफी भी मांग लो, इनाबत भी करो, झुक भी जाओ। जब तुम ऐसे करोगे तो अल्लाह का अजाब टल जाएगा। तुम मला तुम सरून, फिर ये ना हो कि अगर अजाब आ जाए ना, फिर तो कोई मदद नहीं दिया जा सकता। अब इससे हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं कि अब तौबा तो कर लिया, अब उसके बाद जो मर्जी करो, अब तो पिछला साफ हो गया, अब तो हमारी यानी अब और ज्यादा रिलैक्स हो गए, अब जो मर्जी गुनाह करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अनीबू इला रब्बिकुम वासलिमू लहू, और फिर भी डरते रहो अल्लाह के अजाबों से, अल्लाह का अजाब ना आ जाए। और ये भी कि यहां से हमें पता चलता है मिन कबली अय्यातिकुमुल अज़ाब, यानी इससे पहले के अजाब आ जाए तो ये सब काम कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इंसान डिले ना करे कि तौबा को डिले करता रहे, वो कर लेंगे कर लेंगे, अभी क्या वक्त है, अभी बच्चों की शादी हो जाए फिर तौबा एक ही दफा कर लेंगे, हराम खाने से तौबा उस वक्त कर लेंगे, हिजाब करना बेपर्दगी से तौबा उस वक्त कर लेंगे, फलां चीज से तौबा उस वक्त कर लेंगे, अभी सारा कुछ कर लो, तौबा के लिए हमने एक टाइम रखा नहीं, तौबा कर लो और अल्लाह ताला की तरफ पलट के आ जाओ और उसके फरमा बरदार बन जाओ इससे पहले के अजाब आ जाए, वे पता भी नहीं चलेगा फिर। वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और नंबर टू क्या करो या नंबर थ्री कह दे आप, पहली तौबा कह दे, उसके बाद इनाबत कह दे, फिर उसके बाद इस्लाम कह दे, इनाबत और इस्लाम यहाँ एक ही कर ले, और उसके बाद वत्तबिउ, ये स्टेप्स है ना, इत्तेबा करो फॉलो करो, क्या अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम, अहसन की बेहतरीन की जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, और बेहतरीन चीज क्या नाजिल की गई तुम्हारे रब की तरफ से, वो ये कुरान है, कुरान और हदीस, क्योंकि हदीस भी अल्लाह ही की तरफ से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो अल्लाह ही की तरफ से पैगाम था, उससे बाहर नहीं कुछ फरमाया। तो ये आसन कलाम है, ये आसन चीज है, इसलिए इसकी इतिबा करो, यानी कुरान करीम को फॉलो करो, इसके अहकाम को फॉलो करो। हमने क्या फॉलो करना अगर हमें कुछ समझ ही नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं कुरान में है क्या, कुरान कहता क्या है, हदीस में है क्या, ये बातें अगर दिल को तंग करने लगती हैं तो फिर हम क्या फॉलो करेंगे, अगर या इनकी बजाय और चीजें अच्छी लगती हैं इस तरफ आते ही नहीं है तो फॉलो किसको करेंगे। कुरान को आसन कहा गया, इसीलिए तो है ना, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है कि उसने ये कलाम नाजिल किया। आप में फरमाते थे ना नमाज में हमने तशहुद के बाद आसनुल कलाम कलाम कलामी के कलामुल्लाह व आसनुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम और बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। तो कुरान और हदीस, कुरान और सुन्ना, या जिसको कह सकते उसको थामे ताकि गुमराही से बचे। तो ये इसकी पैरवी करना भी इंसान को सीधा रखेगा। अब तौबा करके फिर फ्री हैंड नहीं, अपनी इस्लाह के रास्ते पे चल चुके हो, अब जब कह दिया ना कि मेरे से गलती हो गई अल्लाह मैंने नहीं अब ये करना, अब रास्ता यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया, जिधर जा रहे थे गलत रास्ते पे चले हुए थे, यू टर्न लेके वापस अल्लाह की तरफ पलट आए। तो अब किस रास्ते पे चलना, अब इस्लाह के रास्ते पे चलना, इस्लाह कैसे होगी कि रुजू करें अल्लाह की तरफ, फरमा बरदार होंगे, सबमिट कर दें उसके सामने, और इस कुरान की पैरवी करें। फिर भी अगर कोई पूछे कि कुरान पढ़ना फर्ज है कि नहीं, कुरान पाक को समझना वो क्या जरूरी है कि नहीं, आप बताएं, आसन कलाम यही है, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज ये है। फिर भी इंसान, जब पैसे हमने पहले भी तो पढ़ा आसन उल हदीस, इसका पिछले सबक में ही पढ़ा, ये आसन उल हदीस है, उसको छोड़ के इंसान सोचे कि और चीजें हैं जो मेरे लिए आसन है, जबकि अल्लाह ताला ने इसको आसन फरमाया, जाहिर है अल्लाह का कलाम है ये, जो कुछ भी इसके अलावा वो इंसानों की बातें हैं ना। फिर भी अगर अहमियत नहीं देंगे तो फिर हमने इसकी कदर नहीं पहचानी। मिन कबली अन यातियकुमुल अज़ाब बगततम व अंतुम ला तशऊरून, इससे पहले के अजाब आ जाए, देखिए पहले क्या आया, इससे पहले के अजाब आ जाए फिर तुम्हें कोई मदद नहीं देगा, अब आया इसकी तरफ आ जाओ इसको फॉलो करो, ये नहीं अच्छा ये हुक्म आ गया कर लेंगे, ये कौन सा अभी इतना जरूरी है, कर लेंगे जब ये हो जाएगा, कर लेंगे जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, कर लेंगे जब ये, हमने हर एक चीज को लिए टालने के लिए ना एक वक्त रखा होता है, जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर कर लेंगे, जब ऐसा हो जाएगा फिर कर लेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है इससे पहले कि अजाब आ जाए अचानक, उस वक्त अगर हमने सोचा हो कि हम उस वक्त करेंगे जब ये काम हो जाए, और उससे पहले ही कोई अजाब आ जाए। और अजाब ये इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, कलेक्टिवली भी आ सकते हैं, कौमों पे भी आते हैं जब कौमें गुनाह करती हैं। जैसे आपसे सलम ने फरमाया ना, अब इस हदीस से आपको पता चल जाएगा, ये जो पीछे भी हमने सारी बातें की, जब जमीन में बुराई आम हो जाती है तो अल्लाह ताला अहले जमीन पर अपना अजाब नाजिल फरमा देता है। अगर इसमें नेक लोग होते तो वो भी इसमें मुब्तला हो जाते हैं, जिसमें दूसरे लोग होंगे, फिर अल्लाह की रहमत की तरफ वो लौट जाएंगे। यानी नेक लोगों को फिर अल्लाह ताला उठा लेगा तो अपनी रहमत में दाखिल कर देगा, लेकिन अजाब सबके ऊपर ही आएगा। उसमें ये नहीं होगा कि चुन चुन के बुरे लोगों पे आ रहा है और नेक लोग जो है ना वो आराम से अपने घरों में बैठे, ऐसे नहीं, पूरे फिर पूरी पूरी बस्तियों पे ही आता है अजाब।